नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हमास के हमले के बाद इसराइल के प्रति अपना समर्थन जताने के लिए बुधवार को इसराइल की यात्रा करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस ने सोमवार को ये जानकारी दी। व्हाइट हाउस ने यह भी बताया कि बाइडेन एक शिखर बैठक के लिए जॉर्डन भी जाएंगे, जहां वो जॉर्डन एवं मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष और फलस्तीन के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरीन जियांपियरे ने सोमवार रात जारी एक बयान में कहा, राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन जूनियर हमास के नृशंस आतंकवादी हमले के मद्देनज़र इसराइल के प्रति अपना समर्थन जताने और अगले कदमों पर चर्चा करने के लिए 18 अक्टूबर यानी बुधवार को इसराइल जाएंगे। इसके बाद वो जॉर्डन के अम्मान जाएंगे, जहां वो जॉर्डन के सुल्तान अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात करेंगे। इसराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख रोनेन बार ने 7 अक्टूबर को हुए हमास के क्रूर हमले रोकने में नाकामी के लिए जिम्मेदारी ली है, लेकिन उन्होंने युद्ध में निर्णायक जीत के लिए आखिर तक लड़ने का संकल्प जताया है। स्तब्ध कर देने वाले हमास के इस अप्रत्याशित हमले में 1300 से अधिक इसराइलियों की जान जा चुकी है। हमले के बाद अपनी पहली टिप्पणी में रोनेन बार ने कहा कि ISA चेतावनी नहीं दे पाया। स्थानीय मीडिया ने सोमवार को रोनेन बार को ये कहते हुए उद्घृत किया, पिछले शनिवार से हमने लगातार कई कार्रवाइयों को अंजाम दिया है, इसके बावजूद हम पर्याप्त अग्रिम चेतावनी देने में दुर्भाग्य से नाकाम रहे, जिसकी वजह से हमले रोके नहीं जा सके। संगठन का प्रमुख होने के नाते इसकी जिम्मेदारी मेरी है। उन्होंने कहा, जांच के लिए समय होगा, फिलहाल हम लड़ रहे हैं। भारतीय यहूदी समुदाय हमास के हमले के बाद इसराइल के समर्थन में मजबूत बयान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभारी है। एक भारतीय अमेरिकी यहूदी नेता ने यह बयान दिया। PIE से बातचीत में वॉशिंगटन DC स्थित अमेरिकी यहूदी समिति के एशिया प्रशांत संस्थान के सहायक निदेशक निसिम रुबिन ने कहा कि देश के अन्य निवासियों की तरह इसराइल में भारतीय यहूदी समुदाय भी 7 अक्टूबर को किए गए हमास के क्रूर हमले से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि इस हमले में 1300 से अधिक लोग मारे गए। उन्होंने कहा, हम 7 अक्टूबर के हमले के कुछ घंटों के भीतर इसराइल के समर्थन में मजबूत बयान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत आभारी हैं। अगले दिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उनसे बात की, जो दोनों देशों और दोनों नेताओं के बीच संबंध को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अक्टूबर को अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि भारत के लोग इस कठिन समय में उनके देश के साथ मजबूती से खड़े हैं। ब्रसेल्स में गोलीबारी की घटना में स्वीडन के दो नागरिकों की मौत हो गई और बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू ने इसे आतंकवाद से जुड़ा हमला करार दिया है, जिसके बाद प्राधिकारियों ने सोमवार देर रात राजधानी में आतंकवाद संबंधी अलर्ट को उच्चतम स्तर तक बढ़ा दिया। बेल्जियम की खतरा विश्लेषण समन्वय इकाई ने बताया कि देश के अन्य हिस्सों में भी आतंकवाद संबंधी अलर्ट दूसरे उच्चतम स्तर तक बढ़ा दिया गया है। OCSD केंद्र की लॉरा डेमुलियर ने एक साक्षात्कार में कहा कि प्राधिकारियों की इस समय सर्वोच्च प्राथमिकता बेल्जियम स्वीडन फुटबॉल मैच देखने आए हजारों फुटबॉल प्रशंसकों को स्टेडियम से सुरक्षित बाहर निकालना है, जहां मैच बीच में ही रद्द करना पड़ा। पुलिस ने बताया कि मध्य ब्रसेल्स में सोमवार देर रात गोलीबारी में स्वीडन के दो नागरिकों की मौत हो गई। इसराइल और हमास लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इसराइल का दावा है कि वो गाजा पट्टी से हमास को ख़त्म करके ही अपने हमले समाप्त करेगा। हमास से युद्ध के बीच इसराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान और हिजबुल्ला को चेतावनी दी है। उन्होंने सोमवार को ईरान और हिजबुल्ला से कहा कि वो इसराइल की परीक्षा ना लें। इसराइल की संसद नेसेट में दिए अपने बयान के दौरान उन्होंने पूरी दुनिया से एकजुट होने और हमास को हराने के लिए कहा। इसराइली PM ने कहा कि ये युद्ध आपका भी युद्ध है। इस दौरान उन्होंने हमास की तुलना नाजियों से की। इसराइल द्वारा ज़मीनी आक्रमण किए जाने की आशंका के मद्देनज़र गाजा पट्टी में 10 लाख से अधिक लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए हैं। सहायता समूहों ने चेतावनी दी है कि इसराइल के ज़मीनी हमले से मानवीय संकट बढ़ सकता है। अमेरिकी युद्धपोतों की मदद से इसराइली बल गाजा सीमा पर तैनात हो गए हैं और उन्होंने युद्ध अभ्यास किया। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।